ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन हम सब प्रभुपाद जी की लीलामृत से पाठ करते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी ही हमारे टॉनिक हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी के बारे में जितने हम पढ़ेंगे या सुनेंगे उतने हमारी ऊर्जा बढ़ती है, भक्ति में हम बने रहेंगे और भक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, कि प्रभुपाद जी से हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए सब भक्तों को, यदि वे इस्कॉन से कनेक्टेड हैं तो उन्हें प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं पढ़ना ही चाहिए, लेकिन प्रभुपाद लीलामृत अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत ही आवश्यक। आज जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से, ये सच है कि नहीं सच? हम लोग भारतवर्ष में ही जन्म लिए, लेकिन हम स्वयं चैतन्य महाप्रभु को जानते ही नहीं थे, सठ गोस्वामी कौन है पता ही नहीं था, लेकिन एक प्रभुपाद जी आए और पूरे दुनिया के लोगों को बता दिया कि जगन्नाथ जी कौन है, है नहीं? चैतन्य महाप्रभु कौन है, हनुमान जी कौन है, है ना? ऐसे प्रभुपाद जी का निश्चित रूप से हमें गुणगान करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। क्या जितने लोग यहां बैठे हैं किसकी वजह से? प्रभुपाद जी की वजह से। कल एक रिपोर्टर मुझसे पूछ रहा था, रिपोर्टर समझते ना, अखबार वाला, है ना? रिपोर्टर पूछा कि प्रभु जी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा में आप लोग क्या करते हैं? हमने कहा देखिए हमारे जो गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी, हम तो उनकी रोज पूजा करते हैं, है नहीं? प्रभुपाद जी का गुणगान तो हम रोज करते हैं और हम अपने गुरु की व्यास पूजा मनाते हैं जिसे हम व्यास पूजा करते हैं, और उस साल में जो उनका जन्मदिन आता है तब हम मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा को लोग सोचते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन आता जितने गुरु हैं सबकी हम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो रोज गुरु की पूजा करते हैं, है ना? वो लोग तो साल में एक ही बार करते हैं, हम तो प्रभुपाद जी की रोज आरती उतारते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि बिना प्रभुपाद जी के कुछ भी नहीं है, है ना? जो भी है प्रभुपाद जी से ही है, है ना? ये सच्चाई है। तो इस समय जो चल रहा है, अनंत काल तक उच्च पदस्थ बने रहो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, एक बड़ी दुकान में उसने एक दिन प्रभुपाद जी का भागवतम उठा लिया और उसके अंदर देखा। उसको लगा कि वह बहुत ऊंची चीज है और उसे ज्यों का त्यों रख दिया। द ईस्ट विलेज अदर का लेख पढ़ने के बाद उसकी दिलचस्पी बढ़ी। उसने सोचा कि हो सकता है कि शीत ऋतु के आने के पहले आज पार्क में कीर्तन का अंतिम रविवार हो, अतः स्वामी जी और उनके शिष्यों को पाने की आशा लेकर वह पार्क में गया। उसकी पत्नी एरिक को एक बच्चा गाड़ी में खींचती हुई उसकी बगल में चल रही थी। तभी बाबा को पार्क के दक्षिण ओर से मंजीरों की चिंग चिंग और लयुक्त कीर्तन का सगान सुनाई दिया। देखिए श्री प्रभुपाद जी, जब आप सबको पता है कि अमेरिका गए कार्गो शिप से, गए मालवाहक जलदोष से और 40 रुपए लेके गए थे। आजकल आप 40 रुपए का कुछ आइटम अच्छा नहीं कर सकते, है ना? 40 रुपए ले जाके आप अमेरिका जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन प्रभुपाद जी एक करके दिखा, 40 रुपए मालवाहक जलदूत से कहां गए? अमेरिका गए। कोई धन नहीं था उनके पास, लेकिन जो सबसे बड़ी पूंजी लेकर के गए वो क्या था? भगवद गीता, श्रीमद भागवतम और भगवान का नाम। यही सबसे बड़ा धन है। और जब टॉम स्क्वायर पार्क में गए श्री प्रभुपाद जी, तो वहां डॉलर नहीं बिखेरे सोने चांदी जवाहरात, क्या बिखेरा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही हरि नाम कुल प्रभुपाद जी ने बिखेरा। और जिन जिन भक्तों ने उस समय अंग्रेज भक्तों ने इस नाम को पकड़ा, वो प्रभुपाद जी की ओर क्या हुए? आते चले गए। इस नाम में बड़ी शक्ति है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से एक पार्क से प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया। कहां शुरुआत किया? एक पार्क से, सोचने लगा। और उसी पार्क से भक्त लोग मिलते चले गए। और बाद में प्रभुपाद जी उनको क्या बनाया? शिष्य बनाया। तो हरिनाम में कितनी शक्ति है, उसी की शक्ति के बल पे प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। ये है भगवान के नाम का प्रभाव। तीन चीज प्रभुपाद जी, भगवान का नाम और प्रसाद है ना, प्रसाद को वितरित किया। तो नाम के प्रभाव से, प्रसाद के प्रभाव से, और साथ साथ भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान चेतन महाप्रभु का संदेश दिया, इसके प्रभाव से प्रभुपाद जी ने पूरा परिवर्तन कर दिया। तो उसी पार्क में मंजीरे की आवाज सुनाई दे रही है। तो प्रभुपाद जी का कीर्तन का जब आप हम लोग सुनते हैं कितना आनंद आता है। तो वही बता रहे हैं किस तरह से यह सोच करके यह स्वामी जी ही हो सकते हैं। बाप ने सहगल सहगान का आरोपण किया जबकि उसकी पत्नी एरिक को झूले पर खेलने के लिए ले गई। बाप अब अकेले ही आगे बढ़ता गया और भीड़ में रास्ता बनाता हुआ वहां पहुंचा जहां कीर्तन दल और स्वामी जी ब्रिज के नीचे बैठे थे। सैकड़ों की भीड़ में बाप एक अनजान व्यक्ति की तरह खड़ा हो गया। 19 वर्षीय जूडी कोल्फस की सोचती थी, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मैं जो कुछ देखती हूं मेरी सृष्टि है, मैं ही परमेश्वर हूं, हर वस्तु मेरी है। परमेश्वर होने के विचार से जैसे जैसे वह अभिभूत होती गई, जुड़ी अपने पिता को और हर वस्तु को भूलती गई। वह भ्रमित थी, यदि मैं परमात्मा हूं तो मैं प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती, और एलएचडी से मुझे इतना भय क्यों है? एलएचडी एक नशा होता। तो 19 वर्ष जुड़ी न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज की छात्रा थी और कला तथा इतिहास का विशेष अध्ययन कर रही थी। वह गिटार की शिक्षा रेवरेंड गैरी डेविस से ले रही थी, जो विषाद भाव के गायक और ईसाई धर्म के उपदेष्टा थे और जो उसे विपन्न आत्मा का संगीत सिखा रहे थे। किंतु आज एलएचडी के प्रभाव से उसके मन में गहरी धारणा बन गई थी कि वह ईश्वर है। जो आदमी नशा करता है ना, क्योंकि हम लोग तो नशा किए ही नहीं, पता नहीं चलता, लेकिन लोगों से सुना हुआ है, जो नशेड़ी होता है वो गटर में गिर जाता है। गटर जानते हैं? गटर, गटर में गिर जाएगा, सोचेगा हम पहले से सो रहा हूं है ना, और दूसरे घर में जो है घुस जाएगा, सोचेगा अपना घर है, उसे हर चीज उल्टी नजर आती। तो जो नशा करता है आदमी, उस जैसे ये सोच रहे मैं ईश्वर हूं, क्योंकि वो जो सोचता है वही दिखाई देने लगता है, नशेड़ी की आदत है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से विवेक नष्ट हो जाता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये चीज का विचार आदमी नहीं कर पाता, इसीलिए नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने के विषय ये रहस्य कि नशा करने से विवेक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तुम्हें विवेक में रहना चाहिए। तो इसी तरह सोचो कि मैं ईश्वर हूं। अपने पिता से उसका झगड़ा हो गया था, उसके पिता का मन उससे हट गया था, बाप बेटी के बीच दूरी बढ़ गई थी, जूडी अपने पिता की समझ से बाहर हो गई थी। उसने ब्रॉन्क्स में माँ बाप का घर छोड़ दिया था और डाउनटाउन में आ गई थी। वो अपने एक सहेली से मिलने जा रही थी और टॉम स्क्वायर पार्क उसके रास्ते में पड़ता था जहां प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। जब वह पार्क में पहुंची तो कीर्तन चल रहा था, किंतु भीड़ के कारण वह कुछ अधिक नहीं देख सकी। जब भीड़ में से रास्ता निकालती हुई वह कुछ पास पहुंची तो उसने कुछ व्यक्तियों को देखा। उनमें एक मुंडित मस्तक था, मुंडित मस्तक, कोई दाढ़ी रखे थे और सब बाहें ऊपर उठाए नाच रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में उसने स्वामी जी को देखा जो गलीचे पर बैठे ढोल बजा रहे थे। प्रभुपाद जी बैठे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और चारों तरफ से सैकड़ों लोग जो है क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। प्रभुपाद जी चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार प्रभुपाद जी ने क्यों किया, कैसे किया? एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है, शुद्ध भक्त अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, उपदेश से वो क्या करता है, बदल देता है। प्रभुपाद जी का इतना विश्वास, सबसे बड़ा चीज है प्रेम और विश्वास। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो विश्वास नहीं होता, इसलिए प्रेम और विश्वास दोनों आवश्यक है। प्रभुपाद जी यही था, भगवान के प्रति, नाम के प्रति पूरा प्रेम और विश्वास भक्ति में, इसकी वजह से प्रभुपाद जी सफल हुए। क्योंकि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनको अमेरिका जानते कैसे लगा, जैसे इंडियंस जब अमेरिका जाते हैं तो जानते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको, ओहो हम स्वर्ग में आ गए। अब वही इंडियंस जब अपने देश में आते हैं एक कूड़ा कचरा जैसा लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी चूंकि आध्यात्मिक पुरुष हैं, भक्त हैं, वो जब अमेरिका गए तो उनको अमेरिका कैसे दिखा, आध्यात्मिक दृष्टि से अमेरिका क्या दिखा कि हे कृष्ण आप मुझे इस बिगड़ स्थान में कहां ला दिए। माने अमेरिका जैसा सर एडवांस, हाँ, जिसको आम इंडियन जाकर के स्वर्ग जैसा लगता है, अच्छा लगता है, फिर वो आना नहीं चाहते, वहां जाके झाड़ू लगाएंगे, वॉचमैन नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, हाँ अपने देश नहीं आएंगे, ऐसा होता है। आप सुनो यही स्थिति है। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां पे गए तो कहते हैं हे कृष्ण आप मुझे बिहड़ स्थान, माने प्रभुपाद जी को उबड़ खाबड़ अब बिहड़ स्थान दिख रहा है अमेरिका। यह आध्यात्मिक दृष्टि, आप अमेरिका जाए लेकिन आपकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। जाइए प्रचार के लिए जाइए, डॉलर कमाल के लिए मत जाइए, प्रभुपाद जी से नहीं किया है ना। लेकिन ये दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि, प्रभुपाद जी सोच इस तरह से, इसलिए परिवर्तित कर दिया। हाँ आज प्रचार इस पूरा फैल गया पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी की सोच इस तरह से थी। एक अकेले प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में, यहां 70 साल की अवस्था में आदमी अपने आप रिटायर मान लेता है कि मैं बेकार हो गया हूं, है ना, वो ताश पत्ता खेलेगा, जो बीत जाएगा इधर उधर घूमेगा, टाइम पास करेगा या दुकान खोल बैठ नाती पोता खिलाएगा, ऐसा होता है। लेकिन इस अवस्था में प्रभुपाद जी है ना ऐसे कहते हैं, प्रभुपाद जी इस तरह से भक्ति में कितनी शक्ति होती है ना, इससे पता चलता है। तो प्रभुपाद जी वो करके दिखाए, तो वही प्रभुपाद जी जो है बैठे हुए हैं, मृदंग बजा रहे हैं और सैकड़ों लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या दृश्य होगा उस समय, हाँ, कि प्रभुपाद जी मृदंग बजाए और लोग डांस करें। डॉन क्लार्क 25 वर्ष का था, दुबला पतला गंभीर, सिंह की कमानी का चश्मा लगाने वाला, वह प्रगतिशील चलचित्र निर्माता था और उसके पहले चलचित्र का नाम रिवर्थ पुनर्जन्म था। उसने वियतनाम युद्ध का विरोध अंतःकरण की प्रेरणा के आधार पर किया था और सरकारी सेवा के विकल्प के रूप में वह एक बाल सदन में काम कर रहा था। वह एसडीएस और युद्ध प्रतिरोधक लीग का एक सदस्य था। एक विरोध प्रदर्शन में वह बंदी बनाया जा चुका था और शांति बटन लगाने तथा हाथ कर काला पट्टी बांधने के अभियोग में एक सप्ताह के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। वह बौद्ध धर्म मानता था लेकिन कुछ दिनों से मनोविकास संबंधी दवाओं का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसका नारा था प्रत्येक वस्तु कुछ नहीं है और वह कुछ नहीं प्रत्येक वस्तु है। बड़े क्या फिलासफी थी इसकी, हाँ दोबारा सुनो कि प्रत्येक वस्तु कुछ नहीं है और कुछ नहीं प्रत्येक वस्तु है। क्या फिलासफी है, समझ गए, तीसरी बात सुनिए। हाँ वो चाहता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ नहीं है और कुछ नहीं प्रत्येक वस्तु है। प्रभुपाद जी कैसे कैसे लोगों को सुधारा इसे पता चलता है। इस नारे को मंद की तरह दूर आता हुआ वो घूमता रहता था कि प्रत्येक बस कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है प्रत्येक वस्तु, यही उसका मंत्र था। आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने महान, ऐसे लोगों को भी सुधार दें। किंतु वह अनुभव कर रहा था कि कम से कम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसे भक्ति परक पौष्टिक की आवश्यकता है। उसका शून्यवादी ध्यान बासी पड़ता जा रहा था, भौतिक ज्ञान में वो ताजगी नहीं रहती। तो उसका सब चीज जैसे हरे कृष्ण महामंत्र आप कितना भी जप करो कितना अच्छा लगता है राइट, लेकिन बाकी नाम लो रोटी 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 पूड़ी पूड़ी बोलो अच्छा नहीं लगेगा है ना, आप कुछ बोल सकते ऐसा नहीं। तो उसको जो ये मंत्र बोल रहा था कि प्रत्येक वस्तु कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं है वही प्रत्येक वस्तु है, इसको मजा नहीं आता, इसको बासी लग रहा था। ये चीज आध्यात्म भौतिक कितना अंतर है। डॉन ने द ईस्ट विलेज अंदर में स्वामी जी और उनके कीर्तन के समय पढ़ा था और आज वह पार्क में उन्हीं की खोज में आया था। प्रभुपाद जी के बारे में वो पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पार्क में आया। देखिए ये जो पुस्तक है ना वितरण, क्यों प्रभुपाद जोड़ देते, ये पुस्तक वितरण से प्रभाव बनता है। प्रभुपाद जी के बारे में कुछ आर्टिकल निकला था उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उस पार्क में आया। कुछ महीने पहले एक दिन शाम को उसने स्वामी जी को देखा था। वह स्वामी जी के स्टोर फ्रंट के सामने सड़क की दूसरी ओर बस की प्रतीक्षा में खड़ा था। वह मिश्रित संचार माध्यम के एक कार्यक्रम में अभ्यास के लिए जा रहा था। उसका मित्र शाम के लंच लेट में एक क्षण के लिए गया था। उसी समय उसने देखा था कि स्टोर फ्रंट में केसरिया धारण किए हुए घुटे सिर का एक भारतीय व्यक्ति युवाओं के एक छोटे से समूह को संबोधित कर रहा था। आज लोग भी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ज्यादातर इस्कॉन में यूथ ही नजर आते हैं राइट, जब से आप देखेंगे यूथ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रचार ही यूथ में किया कि जो 60 70 80 साल का बूढ़ा होता है ना सठिया जाता है वो सुनता नहीं है। जैसे आप बूढ़ों का आप प्रचार करना शुरू, हमारा जैसा बेटा हमें को उपदेश देता है, अरे हम बहुत दुनिया देखी है ना। तो प्रभुपाद जी क्योंकि कन्वर्ट जो न्यू जनरेशन यंग जनरेशन को हम समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बूढ़ों को समझाना कठिन काम है बहुत। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को समझाना उसी प्रकार से जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन होता है। सुअर को इंजेक्शन लगाने के लिए 4-5 आदमी चाहिए पकड़ने के लिए उसको, तब एक आदमी इंजेक्शन लगाए तब असर करता है। तो ऐसे जो मायावादी घोर है ना सठिया जाते लोग है ना, उनको प्रचार करने के बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यंग जनरेशन युवा पीढ़ी में अगर आप प्रचार करिए वो बहस जरूर करेंगे, लेकिन वो जब उनको समझाया जाता है तो क्या करते हैं समझ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा युवाओं से गिरते थे है ना। आज जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं वर्तमान जो गुरु हैं है ना, ये सब क्या थे युवा थे है ना। आप जानते हैं जिस जय पताका स्वामी महाराज ये सब 16-17 साल के थे तभी ज्वाइन कर लिए थे, युवा थे है ना। सही सही है कि नहीं सही, यही सही। अरे 1980 पर हमने जब ज्वाइन किया तब भी मैं 20-22 साल 25 साल का था, युवा सब युवा ही ज्वाइन करता है। हमारे देवकीनंदन प्रभु बहुत छोटे में ज्वाइन कर लिया था। जब मैं इस काम मैं जब पीले बस थे तो हमारे डायरेक्टर थे न्यू वर्क डायरेक्टर शिक्षा देते थे, कहने को सब युवा थे। तो इस काम तो शुरुआत ही युवा से, और इस काम को परिवर्तित करने प्रभुपाद जी ने युवाओं को ही प्रचार किया, सारे युवा थे जिनको आज हम महाराज बोलते हैं गुरु बोलते जीस बोलते ये सब युवा थे। वही बाद में धीरे धीरे क्या होता है वृद्धावस्था की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो प्रचार युवा है इसे युवा पीढ़ी तैयार होती, एक बूढ़ा होता जाता युवा पीढ़ी तैयार होती चली जाती है, सब युवा ही नजर आता है ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी हमारे इस काम के जो संस्थापक आचार्य हैं शरीर से वृद्ध थे लेकिन युवा शक्ति। आप प्रभुपाद जी डांस करते भी देखिए रथ यात्रा में, सेंट फ्रांसिस्को जब रथ यात्रा पहली रथ यात्रा निकाली थी क्या डांस करते प्रभुपाद जी, उनसे प्रेरणा मिलती है युवाओं से। कभी कभी आप जब पढ़ते हैं प्रभुपाद लीला में ऐसा लगता है कि हम लोग युवा होकर कुछ नहीं कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में कर दिया हम लोग इस अवस्था में उतना नहीं कर पा रहे हैं। चार पांच घंटा काम करेंगे थक जाएंगे, रेस्ट चाहिए, राइट। लेकिन प्रभुपाद जी नॉन स्टॉप विदाउट रेस्ट बिना उसके लगे थे। जब सब सोते थे तो प्रभुपाद जी जाग करके अनुवाद करते थे। सोचने वाली बात, कितना मेहनत किया प्रभुपाद जी, साधारण पुरुष ने असाधारण करके दिखाया। ये तो युवाओं से घिरे हुए थे, युवा डॉन। जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं सड़क पार करके स्टोर फ्रंट में घुस जाऊं। देखो प्रभुपाद जी का क्या आकर्षण था, वो देख, वो सड़क के उस पार था, स्टोर फ्रंट इस पार था, अब उस पार वो बस स्टैंड पर खड़ा होकर के बस की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी को देख करके उसके दिल में क्या हुआ कि बस सड़क क्रॉस करके घुस जाऊं कमरे में। ये आकर्षण प्रभुपाद जी, वहां बैठूं और सारे सांसारिक नाते तोड़ दूं, अपने आप परिवर्तन, इसे कहते हैं परिवर्तन। यहां जितने भक्त बैठे हैं आसानी से नहीं बैठे, क्योंकि यहां पे आने के बाद दुनिया उल्टी नजर आने लगती है, राइट। देखो पीला कपड़ा प्रभु जी बैठे हुए, ऐसे हम लोग यहीं बंबई में पीले कपड़े में थे। मैं और ब्रजहरी प्रभु एक साथ ही इसका ज्वाइन किया था और दोनों पीले कपड़े में थे। राधा राज बिहारी के जो फूल का जैसे माता जो हार बना रही, तो फूलों का उस समय हम लोग बाल्टी में फूल जो चढ़ जाता था ना लेकर, तो हम और ब्रजहरी प्रभु ऐसे बाल्टी पकड़ के जूहू बीच जाते, समुद्र किनारे वहां फेंकने जाते थे, है ना। माने सेवा भाव। और एक हफ्ते दो हफ्ते तक बाहर जाने का माने कोई चांस ही नहीं था, इतना टाइट शेड्यूल था। और देवकीनंद प्रभु टाइट शेड्यूल न रहता हो ही नहीं सकता, है ना। एक एक चीज का पूरा टाइम टेबल होता था, है ना। हम लोग पीले कपड़े होते थे, अब बाहर दुनिया देखने की इच्छा होती थी तो हफ्ते में एक दिन हरिनाम संकीर्तन होता था, नगर संकीर्तन। तो हम लोग इंतजार करते थे नगर संकीर्तन, हम बंबई देखेगा। लेकिन अब कुछ चीज देखने की इच्छा नहीं होती। ये होता है परिवर्तन। वो प्रभुपाद जी को देख करके बोलता है, मन करता है कि मैं जाऊं, घुस जाऊं, बैठ जाऊं, सारे रिश्ते क्या कर दूं, तोड़ दूं। स्वाभाविक होता है। यह शुद्ध भक्त के लक्षण। प्रभुपाद जी इस तरह से किया। वह केवल मेरे मन की क्षणिक कल्पना है, आखिर मैं विवाहित हूं। अब उसका मन सोच रहा है, अब विवाहित था ना, तो अपने कार्यक्रम का अभ्यास करने जा रहा हूं और जो भी हो मैं स्वामी जी के बारे में कुछ नहीं जानता, इससे मेरा मित्र और मैं बस में सवार हो गए। देखो मन में कैसी दुविधा होती है। एक मन कह रहा है कि चले बैठ जाऊंगा, दूसरा करता है मैं विवाहित हूं, है ना। तो दूसरा मन भारी पड़ गया, बस में चला गया, प्रभुपाद जी के पास ले गया। किंतु डॉन स्टोर फ्रंट से कुछ मकानों की दूरी पर ही रहता था और कभी कभी वह उसके सामने से निकला करता था। एक बार वह फुटपाथ पर खड़े होकर कई मिनट तक खिड़की पर चिपकाए गए श्रीमद् भागवतम के मुख पृष्ठ को देखता रहा था। जो कवर रहते ना, ये फ्रंट कवर, वो चिपकाया हुआ था श्रीमद् पहला भाग तुम्हारा, इसे उसी को देख रहा था डॉन। इस बार इस पर ग्रहों से घिरा हुआ एक अंडाकार कमल दिखलाया गया था और उसी क्षण मेरा परिचय आध्यात्मिक इंद्रिकता की धारणा से हुआ। और जब मैंने महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों का चित्र खिड़की पर देखा तो वास्तव में विजित हो गया। मैंने सोचा हां सचमुच मुझे इसी की जरूरत है, किसकी, रस की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम रस लेकर के आए इस पृथ्वी पर। कहा गया कि गोलोक केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ लोक से ये प्रेम धन लेकर के आए, हम सबको दिया। श्री प्रभुपाद जी उसी प्रेम धन को वितरित किया और उसका फल क्या है भक्तगण, जो प्रेम धन लेता गया प्रभुपाद जी का होता गया। अब प्रभुपाद जी को हम लोग भगवान के भक्त बने। ये प्रभुपाद जी बहुत बड़ा चमत्कार। डॉन अपनी पत्नी के साथ पार्क में फुटपाथ पर टहल रहा था। वह स्वामी जी की खोज में था लेकिन वास्तव में वो नहीं जानता था कि उनसे पहचान कैसे करे। मिलना चाहता था कि कैसे पहचान करे। उसे गिरवे वस्तुओं को देखने और बौद्ध शैली में कीर्तन सुनने की आशा थी लेकिन वह कुछ पा नहीं सका। वह अपनी खोज छोड़ चुका था और केवल यह देखने के लिए चक्कर लगा रहा था कि वहां किस तरह के संगीतक थे। तभी उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ जैसे कुछ संगीतों के इर्द गिर्द जमा हो रही थी। उसे संगीत लय ने आकर्षित किया था। वह एक दो तीन, एक दो तीन का सरल लय था जिसमें एक विशेष प्रकार का अलंकरण था, चुमकी प्रकार था। उसने भीड़ के ऊपर बीच बीच में उड़ती एक बांह देखी और उसे सोचा कि वहां कोई भाव में नृत्य भीड़ के बीच में हो रहा है। और उसने उसे ढोलक की थाप के साथ हवा की लहरों के साथ बहता संगीत सुनाई दिया जो भाव में किस का नहीं था। उससे वह और अधिक आकृष्ट हुआ। भीड़ में से होता हुआ वह उत्तरोत्तर निकट होता गया। तब उसने कुछ लोगों को कीर्तन करते हुए देखा। अन्य लोग नाच रहे थे और बाहें इस तरफ घुमा रहे थे कि उसने समझा कि अमेरिका के इंडियनों और एशिया के लोगों के नृत्य की किसी विचित्र शैली का प्रदर्शन हो रहा है। उनको तो विचित्र लगेगा ही लगेगा कि चेतन महाप्रभु के नृत्य की शैली उनको अलग शैली लगी। कि आप जानते हैं जो रॉक डांसर होते हैं उनका अलग हाथ इधर झटके, हाथ इधर पैर झटकेंगे, उनका डांस अलग होता है। यहां तो भाव में नृत्य हो रहा है तो उनको बड़ा विचित्र लग रहा था। उसका सोच रहा है कोई कोई अलग शैली है, बिल्कुल अलग शैली है या किसी विस्मित अतीत की चीज मालूम हो रही थी। दान ने निश्चय किया कि जरूर यह हरे कृष्ण समुदाय होगा। वो सिर्फ नृत्य के कीर्तन से समझ गया कि जरूर वही हरे कृष्णा वाले ही होंगे, है ना। किंतु वहां कोई विशेष प्रधान नहीं दिखाई दे रहा था। वो गरुआ बस ढूंढ रहा था, कोई गरुआ बस नहीं दिखाई दे रहा था। लोग केवल लोअर इस साइड की सामान विशूषा में थे और स्वामी जी कहां थे। तब उसने उन्हें छोटा ढोल बजाते हुए अति सामान्य रूप में बैठे देखा। उसके नेत्र बंद थे और एकाग्रता में उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। श्री प्रभुपाद जी आंखें बंद करके अब भाव से क्या कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और वो डांस खड़े होकर कर रहे हैं। ये भाव उसने देखा। स्वामी जी देखा, देखा प्रभुपाद जी किस तरह से ऐसे नहीं चेंज किया डॉन। स्वामी जी की ओर किसी का ध्यान नहीं था और पहले पल एक कोने बैठे उस वृद्ध भारती को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। कीर्तन में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं लग रही थी। वो सोच रहा था कि जो डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यही विशेष लोग हैं। क्योंकि वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी इनके कीर्तन में कोई भूमिका नहीं है, जबकि भूमिका वही है। क्योंकि मृदंग और स्वर तो वही दे रहे हैं, एनर्जी तो वही दे रहे हैं, लेकिन ये उसके सब नहीं आ रहा था, है ना। किन धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि वे कौन है। ये वही स्वामी थे जिसके विषय में मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था और जिन्हें स्टोर फंड में देखा था। बड़े ध्यान से देखा तो उसको वही स्वामी जी। कुछ देर के बाद वे बोले, किंतु मैं उन्हें नहीं सुन सका। मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि वे इतने अधिक विनम्र पुरुष थे कि किसी मंच पर चढ़कर बोलने में उनकी कतई रुचि नहीं थी। प्रभुपाद जी इंतजार नहीं करते थे बड़ा मंच मिले, हजारों की भीड़ हो तभी हम बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं किया, है ना। जहां रहते थे एक ही व्यक्ति मिलते थे, बोलना शुरू कर देते थे, है ना। प्रभुपाद जी कहते वी नीड क्रीम नॉट क्राउड, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्रीम चाहिए। हमें स्टार्स नहीं चाहिए, हमें एक चांद मिल जाए, एक सूर्य की तरह एक भक्त मिल जाए काफी। प्रभुपाद जी भीड़ की प्रतीक्षा नहीं करते थे, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें इन्हें सोचना चाहिए कि जब माहौल हमारे माफिक हो जाएगा तभी हम प्रचार कार्य शुरू कर देंगे, ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी हमको क्या करना है, प्रचार करना है। हमेशा इंतजार करते रहेंगे, ये भौतिक संसार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये दुखाल है। हमें परिस्थितियां अपने फेवर बनाने जैसा प्रभुपाद जी ने किया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने यही चमत्कार किया कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह प्रभुपाद संघर्ष करके इतना बड़ा मौन खड़ गया। हम लोगों को तो बना बनाया मिल गया है, हम इसको अच्छी तरह संभालने चलाएं, है ना, वही हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन प्रभुपाद कितनी कठिनाई से किस तरह से संघर्ष करते हुए हमको सौंपा है, हमारा कर्तव्य है इसको हम क्या करें, अच्छी तरह से और बढ़ाएं। ए प्रभु तो ही बोल रहा है बाप उनके सभी शिष्य उनके चरणों के इर्द गिर्द बैठे थे, वे कीर्तन कर रहे थे और मैंने भी उनके साथ कीर्तन करने और मंत्र सीखने का प्रण किया। मैंने हरे कृष्ण कीर्तन को एक शांति अभियान में एक बार पहले सुना था और मैंने इसे बहुत सुंदर पाया था। उसके बाद स्वामी जी भी बोले थे, मेरी धारणा थी कि यह कोई सांसारिक मनुष्य नहीं है, उसकी सोच जो सांसारिक व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है कि यह व्यक्ति प्रभुपाद जी के बारे में, यह कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, ये सच है, वो सच यह सांसारिक नहीं है। और मैंने सोचा यही वह व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश रही है। वे अन्य हर किसी से भिन्न प्रतीत होते थे, मानो वे किसी अन्य स्थान या विश्व से आए हों। मैं उनकी ओर आकृष्ट हो गया। प्रभुपाद जी सीधा बैकुंठ लोक से हैं, भेजे गए एक मैसेज दूत, तो आए ही आध्यात्मिक वर्ल्ड से, इसलिए वो फिर करा। दूसरे कीर्तन के बाद स्वामी जी और उनके शिष्यों ने गलीचा लपेटा, अपने वाद मंदक उठाया और वे जाने की तैयारी में लग गए। कीर्तन करते थे और जब कीर्तन समाप्त हो जाता था सर लपेट करके विचार चल देते थे। क्या संघर्ष के देव प्रभुपाद जी। बाप पार्क दूसरी ओर झूले के पास अपनी पत्नी और बच्चे को लेने गया, किन स्वामी जी की छवि उसके मन में बनी रही। वे अन्य हर किसी से भिन्न प्रतीत होते थे, उनका उच्चारण मोटा था। वे भी बाप ने निश्चय किया कि कुछ दिनों में वह स्टोर फ्रंट उनका प्रवचन सुने जाएगा। बाप ने सोचा यह मिला एक नेता, ये माने एक नेता जो उनको, एक लीडर जो उनको चाहिए था, ये मिल गया, क्योंकि इनका प्रवचन सुनने में जरूर जाऊंगा। डॉन और उनकी पत्नी संगीतों की विभिन्न मंडलियों का जायजा लेने के लिए पार्क में चहलकदमी करते रहे। डॉन की पत्नी को आश्चर्य था कि उसका पति जो इतने शर्मिले स्वभाव का है कीर्तन में नाच रहा था। उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है बड़ा शर्मिले स्वभाव का है लेकिन नाच रहा था। क्योंकि नाचना अपने आप में नाचना है ना, कभी किसी को भी नाचो तो नाचता नहीं है, लेकिन बिना कहे वो नाच रहा था। जबकि हमारा पति इतना शर्मिला था तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि कैसे नाच रहा था। देखिए उसका भाव है। डॉन बोला कि वह किसी दिन स्टोर फ्रंट जाकर स्वामी जी का प्रवचन सुनेगा। जूडी वहां खड़ी हुई मतिभ्रम का शिकार हो गई थी। उसके हाथ में स्टे हाई फाई एवर, सदैव ऊंचे बने रहो, एक पर्चा में लिखा था कि सदैव ऊंचे बने रहो, पर्चा था जिसे वह बार बार पढ़ रही थी, जिसमें वह सोच रही थी कि यहां की सारी घटना किसी अन्य ग्रह से प्रकट हुई है। एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, क्या तुम वहां जाना पसंद करोगी जहां स्वामी जी हैं? जूडी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया कि मैं वहां जाना पसंद करूंगी। स्टोर फ्रंट पर एक भक्त ने जूडी को प्रसादन के रूप में एक चपाती दी और उसे स्वामी जी के कक्ष में ऊपर चलने को कहा। जाते ही चपाती दी। प्रसाद का प्रभाव है ही ऐसा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो प्रचारक जब भी जाएं प्रसाद लेकर के जाएं, और सबसे पहले अगर किसी को आप मिलते हो तो क्या करो, उसको क्या दो, प्रसाद दो, अपने सामने दो, पूरा डिब्बा मत पकड़ो। क्योंकि जब हम किसी को डिब्बा पकड़ाते हैं वो डिब्बा जानते हैं क्या करता, साय में रख देगा। आप डिब्बा खोल, जैसे प्रभुपाद जी का एक भी लड्डू रहता था उसी से 10 आदमी को मारते, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, क्योंकि प्रसाद था तिनके के समान हो चाहे पूरा थाली भरा हुआ, प्रभाव उतना ही होता है ना। जानते हैं महाप्रसाद के एक तिनके एक नाखून के छोटे अंश के लिए शंकर जी में पार्वती में लड़ाई हो गई थी, आप लोग सुना होगा, सोच रहे प्रसाद कितना प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी शिक्षा दिए कि कभी हमारे जो प्रचारक हैं हमेशा गाड़ी में प्रसाद रखें, जब जाएं तो सबसे पहले उसके हाथ में क्या पकड़ाए, प्रसाद दें, वो खाए। क्योंकि प्रसाद पाते ही उसका विचार क्या होता है, बदलने लगता है। कि हमारे यहां कहावत है, जिसकी खाई उसकी गाई, आज जिसका दिया हुआ खाता है उसके अनुसार गाने लगता है, चले लगता है। तो जब प्रसाद खाएगा तो हमारे अनुसार बात करेगा, जो हम चाहे वही बोलेगा। इसके किसका असर होता है, प्रचार का। तो जैसे ही वो गई तुरंत उनको क्या दिया, एक चपाती एक रोटी का प्रसाद दिया। ये दृश्य ऊपर पहुंचकर वह उसे बड़े कमरे में प्रविष्ट हुई जो सुगंधित धूप से भरा हुआ था। वहां ऊंचे फूलदान रखे थे और फर्श पर तिल के दाने बिखरे हुए थे। उसने देखा कि स्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों के छोटे से चित्र के सामने सिर झुकाया। फिर वे खड़े हो गए और कमरे से बाहर आते हुए उनका दरवाजा बंद कर दिया। यूनी समझा कि वे फर्श को ही नमस्कार कर रहे थे। प्रभुपाद जी जब प्रणाम किए तो उसने सोचा कि फर्श को प्रणाम कर रहे हैं, हाँ जमीन को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा होता है पहली बार सोचा। उसके चारों ओर लोग मंद स्वर में माला पर जप कर रहे थे और यद्यपि वह शब्दों को नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि कीर्तन तो समझ आता है लेकिन जब समझ नहीं आ रहा था तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ऐसा जप कर रहे थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे लोग क्या बोल रहे हैं। है तो वही बोल रही है कि मंद मंद में कुछ बोल रहे थे जब खड़े समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे सब कुछ शांतिपूर्ण प्रतीत हुआ। स्वामी जी के एक शिष्य ने उसे पीछे के कमरे में चलने के लिए कहा और जिज्ञासा से भरी जुड़ी उसका अनुगमन करने लगी। वहां स्वामी जी अपने चटाई पर बैठे और ज्योतिर्मय प्रतीत हो रहे थे। कमरे में करीब 10 लोग और थे। प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या पार का कीर्तन उसे पसंद आया था, तो उसने कहा मैंने उसे बहुत पसंद किया। प्रभुपाद जी उससे बात कर रहे हैं, क्या तुम पास ही रहती हो? प्रभुपाद जी ने पूछा। जूडी के मन में विचार कौन गया कि वह तो सर्वव्यापक सत्य है। वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी कैसे पता चल गया कि मैं पास में ही रहती हूं। देखिए बड़ा आशय कर रहे थे स्वामी जी के बारे में सर्वव्यापक। और उसने ऐसा उत्तर दिया जिसके बारे में से सोचा कि वह बहुत ही रहस्यमय प्रतीत हुआ होगा। ओह मैं माने क्लियर नहीं बोल रही ही रहती हूं। स्वामी जी बोले अच्छा जो तुम हमारे प्रतिदिन कीर्तन और कक्षा में आ सकती हो। प्रभुपाद जी बहुत यहां आ सकती हो। तब उसके समय आया कि वह इतना निकट नहीं रहती और आश्रम पहुंचने के लिए ब्रांच से 1.5 घंटे का सफर करना होगा, किंतु उसने निश्चय किया कि स्वामी जी ने उसे आने के लिए कहा है तो आएगी। देखिए वो जानते थे कि मैं दूर रहती हूं 1.5 घंटे का, है ना, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन जब स्वामी जी कह रहे हैं तो मैं आऊंगी। तब उसने सोचा कि यह तो मैं ऊपरी मन से कह रही हूं, ऊपरी मन से कह रही हूं, किंतु प्रभुपाद ने उसे आश्वस्त किया मानो वे उसके विचारों को जान रहे हो। वह ऊपरी मन से कह रही है और कहा कीर्तन प्राचीन है, बहुत सरल है और उदात है। वे पीछे की ओर झुक गए। हम शाश्वत हैं उन्होंने कहा, और हमारी चारों ओर की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। अब जूडी का एक एलएचडी का नशा उतर रहा था। जिस समय वह स्वामी जी से विदा हुई बहुत देर हो चुकी थी। वह रात भर आश्रम में ठहरना चाहती थी किंतु लड़कों ने उसे अनुमति नहीं दी, लेकिन कीर्तन में सम्मिलित होने का उसे पक्का निश्चय कर लिया था। किस तरह से प्रभुपाद जी ने इसको प्रचार किया देखे। बाब ने जो कुछ पार्क में देखा था उसका आसन करते उसे स्वाभाविक लगा। वह शाम की कक्षा में जाने लगा और उसने प्रभागोत्तम का अध्ययन और घर पर जप करना आरंभ कर दिया। भागवतम के आवरण पृष्ठ को जिस पर आध्यात्मिक व्योम चित्र था निकालकर उसने मढ़वा दिया, फ्रेम करवा दिया, उसका कवर का फ्रेम करा दिया, उसको अच्छा लगा। और उसे घर में बनी छोटी सी वेदी पर स्थापित कर दिया। चित्र पर वह पुष्प अर्पित करता और उसके सामने बैठकर हरे कृष्ण कीर्तन करता। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। किस तरह से भागवतम के कवर पृष्ठ को फ्रेम करा करके वेदी बनाकर रखा और पुष्प अर्पित करना शुरू कर दिया और वहां बैठ करके भागवतम को एक तरह से केंद्र में ला करके, पूरा भागवतम ही नहीं सिर्फ कवर के चित्र को देख करके और कीर्तन करना शुरू कर दिया। देखे ये है प्रभुपाद जी का चमत्कार। प्रभुपाद बहुत कम बाब स्वामी जी के दार्शनिक विचारों और उनकी पुस्तकों और उनकी कक्षाओं पर मुक्त था और प्रारंभ से विस्मय अभियुक्त था कि स्वामी जी की शिक्षाओं में सभी प्रश्नों के उत्तर थे। वास्तव में यदि कोई प्रश्न करे और आप उसका उत्तर दो तो आदमी बड़ी जल्दी क्या होता है समझ जाता है। अब प्रभुपाद जी मास्टर इस बात, कोई कैसा भी प्रश्न करे है ना, प्रभुपाद जी क्या करते थे तो उसको सेटिस्फाई कर देते। और जब शंका दूर होती है तो प्रेम क्या हो जाता है, बढ़ता है। प्रभुपाद जी डाउट्स ही क्लियर कर रहे थे, आप समझ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शंका होती है वहां प्रेम नहीं होता, जहां प्रेम होता है वहां शंका नहीं होती। तो डाउट शुड बी क्लियर। ये जो शंकाएं हैं, अब ये शंका पति पत्नी के बीच में हो, प्रेम प्रेमिका के बीच में, भाई बहन के रूप में हो, भक्त और भगवान के बीच में, किसी के बीच में अगर शंका है तो प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम होगा तो शंका नहीं होगी। इसे डाउट्स शुड बी क्लियर। ये जो शंका है उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए प्रभुपद सेरे दिल बैठ करके प्रवचन देते थे और 15-20 मिनट तक प्रश्न और उत्तर निश्चित, कि आप प्रश्न करो हम उसका उत्तर दें। अब प्रभुपाद जी के सामने चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, सब निरुत्तर हो जाते थे। प्रभुपाद जी इतना सेटिस्फाइड, इसीलिए चमत्कार हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे, किसके बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में, किसके बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में। तो जैसे गिलास है ना, ऐसे पानी भरा हुआ था, वैज्ञानिक लोग थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या बोला, पानी, वाटर। तो प्रभुपाद जी कहे दिस इज वाटर। प्रभुपाद जी ने कहा कि पानी का फार्मूला मालूम है, तो वैज्ञानिकों को तो पता ही रहता है, कहा यस यस टू, हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलाकर क्या बनता है, पानी बनता है, पानी को। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, जिस वैज्ञानिक ने जिस दिन जिस तारीख को पानी के फार्मूले का पता लगाया, पानी उसके पहले से मौजूद है। समझिए क्या समझे प्रभुपाद, कि पानी का जो फार्मूला है H2O, जिस वैज्ञानिक ने जिस दिन इसका खोज किया, पानी उससे पहले से मौजूद है। बड़े बड़े समुद्र हैं, झील हैं, झरने हैं, नदियां हैं, इनको कौन बनाया, वैज्ञानिकों ने क्या बोला, दैट इज गॉड। तो प्रभु का यस, हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान ही परम वैज्ञानिक, क्योंकि सबके स्रोत कौन है, भगवान। अगर भगवान पानी नहीं दिए होते तो आप किस पर रिसर्च करते। देखो वैज्ञानिक कोई भी चीज अगर जानकारी करता है तो जानते क्या मतलब रिसर्च। तो प्रभुपाद समझाते थे कि सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर, जो पहले ही बना के दिया है वो ज्यादा महत्व होता है, अर्थात भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जल दिया है। अब जब एक बार पानी दे दिया, उस पर तुम कितना भी दिमाग लगाकर रिसर्च करो है ना, वो अलग बात है, लेकिन तुम दूसरा ही कहलाओगे। इसलिए वैज्ञानिक किसी चीज खोज करता है तो रिसर्च बोलता है, अर्थात दोबारा जान लेना, लेकिन जिसे पहले ही जान करके हमको दिया हुआ है वो ज्यादा महत्व, दैट इज कृष्ण। ये प्रभुपाद समझाने से पहले यही उनको समझना चाहिए। वैज्ञानिक को बनाने वाले भी कौन है, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद बोलते थे कि वैज्ञानिक कौन बनाता है, भगवान बनाते हैं, जिनको चाहे न्यूटन्स बना दें, गैलीलियो बना दें। अगर इंसान के हाथ में होता तो दूसरा आइंस्टाइन क्यों नहीं बना लिया आप लोगों ने, प्रभुपाद बोलते थे, दूसरा न्यूटन क्यों नहीं आप लोगों बना लिया, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। भगवान जिसको बनाना चाहे, ज्यादा दिमाग दे दें तो साइंटिस्ट बन जाता है, ज्यादा बल दे दिया दारा सिंह जैसा पहलवान बन जाता है, ज्यादा धन दे दिया धनवान बन जाता है, सुंदरता देते मिस यूनिवर्स बन जाता है, मिस वर्ल्ड बन जाता है। ये देते भगवान है, भगवान जिसको देते हैं वो बनता है। ये प्रभुपाद जी समझाने में क्या रहे, सफल रहे। अब तुम वैज्ञानिकों को पानी का फार्मूला पता है, अब फिर भी लोग पानी के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। जब पानी का फार्मूला तुम्हारे पास है तो लोग क्यों मटकी फोड़ रैली निकालते हैं संसद के सामने, पानी पिलाओ, किसान क्यों जो है आत्महत्या कर रहा है, पानी नहीं मिलता। जब तुम्हें पानी का फार्मूला मालूम है तो पिलाओ पानी, भगवान पर क्यों निर्भर हो, भगवान का जो सिस्टम है वर्षा होगी उस पर क्यों निर्भर हो। तो सिस्टम भगवान का, गुणगान विज्ञान का करेंगे, ये नहीं चलेगा। जब भगवान का दिया हो खाते हो, एक केला किसने बनाया? प्रभुपा जी का और अच्छा उदाहरण देते थे न्यूटन का, कि एक बार क्या हुआ, एप्पल गिर गया, ध्यान सुनेगा, एप्पल गिर गया है ना, तो न्यूटन से क्या सिद्धांत निकाला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कोई भी चीज गिरती है नीचे जाती है। प्रभुपा जी वहां जानते क्या बोलते हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि एप्पल पहली बार गिरा था, एप्पल न्यूटन के पहले भी गिरता था, नीचे ही जाता था, लेकिन न्यूटन जब रिसर्च किया तो उसके पहले जो है एप्पल गिरता था तो आसमान में चला जाता था, ऐसा नहीं है, ये पहले भी नीचे ही गिरता था। न्यूटन को तो बाद में पता चला, जब उसको पता चला तब बता कि नहीं तो कुछ है जमीन के नीचे, है ना, गुरुत्वाकर्षण से उसने रिसर्च किया, लेकिन सर्च करने वाले कौन, भगवान है, कृष्ण है ना, तो इस तरह से पहले से एप्पल गिरता था और नीचे ही गिरता था जाता था, कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है पहले से, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है ना। और आज जो एप्पल खाते हैं, वैज्ञानिकों को अभी तक एप्पल का क्या फॉर्मूला है पता नहीं। आप इतने बड़े वैज्ञानिक को एप्पल बना के दिखाओ है ना, नारियल बना के दिखाओ, तो नारियल का पानी पियेंगे, एप्पल खाएंगे, गुणगान किसे करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं, नोबेल प्राइज लेंगे, तो खा के वैज्ञानिक हो, अगर भगवान ने तुम्हें वैज्ञानिक बनाया, अगर एप्पल बनाने वाले भी कौन है, भगवान। इसलिए सब चीज के स्रोत कौन है, प्रभुपाद जी इस तरह से वैज्ञानिकों के बीच प्रचार किया, तब जाकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस तरह से प्रभुपाद जी ने अब उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या करते थे, समझा देते, समझने से इंसान क्या होता है, परिवर्तित होता है ना। प्रभुपाद जी कोई लालच नहीं दिया, जैसे दूसरे लालच देते हैं तो हमारा ज्वाइन कर लो हम तुम्हें भैंस दिलवा देंगे, जैसे क्रिश्चियन ईसाई लोग क्या करता है, तुम्हारी नौकरी दिलवा, तुम ईसाई बन जाओ, ये कर दो, ऐसा लोग करता है। प्रभुपाद जी ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ हरिनाम दिया, प्रसाद दिया, श्रीमद भागवतम का संदेश दिया, एज इट इज प्रचार किया, और उनके दिमाग जो कूड़ा कचरा भरा हुआ था है ना, उसकी सफाई करके समझा दिया। जानते इस पर केस चल गया था कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं, प्रभुपाद इनके पास ब्रेन ही नहीं तो वॉश क्या करेंगे। प्रभुपाद जी ऐसा बोला है ना, ये है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जरा सब डरते नहीं, सिर दिल है ना, अब बिल्कुल सच, जिसके पास ब्रेन ही नहीं क्या हम वॉश करेंगे, हम तुमको दिमाग देते हैं, सच्चाई बताते हैं, ये है प्रभुपाद जी। तो ऐसे प्रभुपाद जी की परंपरा से हम लोग जुड़े हैं, इससे हमें बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसे प्रभुपाद जी का हमें क्या करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, आज एकादशी के दिन हमें 25 माला जप करना है, व्रत रखना है, और प्रभुपाद जी को याद करना है, कि प्रभुपाद जी की वजह से हम सब हैं यहाँ पे, राइट। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग यहाँ थोड़ी बैठते, कहाँ होते पता ही नहीं, कहाँ जाते, लेकिन एक प्रभुपाद जी आए और चमत्कार कर दिया। आप जानते हैं मास्को में जो गीता का इश्यू हुआ, तो पता है ना आप लोगों को, गीता का जो इश्यू आया था, ये भगवान की कैसी योजना थी, जिस शहर में घटना घटी साइबेरिया में, तोमस सिटी एक छोटा सा कस्बा है ना, इसके पीछे रशिया का जो वहां के लोग रहते थे, एक बड़ी रणनीति के तहत कर उनका ये इच्छा थी कि तोमस्क एक छोटा सा शहर है साइबेरिया, अगर यहां पे प्रतिबंध लग जाएगा गीता को पर प्रतिबंध लग जाएगा, तब इसके बेस पे हम पूरे रशिया में जो है गीता प्रतिबंध लगा देंगे, और एक बार रशिया में प्रतिबंध लग जाए फिर अमेरिका वाले यूरोप वाले सबके सब जो है एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि होता वो है जो भगवान चाहते हैं, असल होता वो है जो भगवान चाहते हैं, ये इसके पीछे उनकी मानसिकता थी। तो उन्होंने क्या कहा, अब क्या आप लगाएं, क्योंकि ये जो गीता है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसमें आतंकवाद का बू आता है, ये हिंसा करने का जो है बढ़ावा देता है, ऐसा बिल्कुल नॉन्स जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस तरह से लाइटिंग एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है एक कंपेन हुआ है ना, कि वो लोग मजबूर हो गए। और आज का न्यूज जानते क्या है कि दो बार वो लोग कोर्ट में गए, डिसमिस हो गया, फिर उन्होंने मान ही लिया कि हम आगे जाएंगे ही नहीं, फिनिश्ड, कैसे खत्म हो गया। तो कितने ऐसा क्या हुआ है? प्रचार, आपने जो प्रचार, जो हमारे भक्त वहां पूरे मास्क में जो प्रचार चल रहा है, 2.5 लाख जानते हैं, कम से कम करोड़ों गीता जो है रशियन भाषा में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 250 इस्कॉन के मंदिर है, प्रीचिंग सेंटर कहां, रशिया में 250 प्रीचिंग सेंटर वहां पे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है भक्त बने, रशियन लोग भक्त बने, इतना जबरदस्त वहां प्रचार है। तो वहां के लोग घबरा गया है, और उनके दिमाग में क्या है, यही ये जो गीता है इसी में सब कुछ है, गीता की वजह से ये सब बढ़ रहा है, इसी पर प्रबंध लगा देंगे तो अपने आप सब बंद हो जाएगा, ये उनकी सोच थी। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जहां कृष्ण और अर्जुन है, विजय उसी की होती है, इस कारण विजय कर। लेकिन इससे क्या हुआ, प्रचार बहुत ज्यादा हो गया है ना, इतना ज्यादा जो मीडिया वाले नहीं दिखाना चाहिए, वो भी लल्लू पंजू अखबार जो थे ना, जिनको कोई नहीं पूछता, वो भी छाप रहा है गीता है ना, पूरे दुनिया में हर भाषा में गीता का एक तहलका मच गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, गीता, ये भगवान का प्रचार करने का एक अवसर था है ना, जो नहीं जानते थे वो भी प्रचार हुआ। तो एक चमत्कार है ना, इसका असर क्या हुआ कि जो हमारी गीता थी मास्क में, आप जानते क्या, जब एक कैंपेन जब चला, मीडिया माने लगा, इश्यू जब हुआ, इसका क्या प्रभाव हुआ कि जो हमारी गीता थी रशियन ही नहीं, इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में थी, वो हाथों हाथ रातों रात बिक गई, अर्थात पूरे रशिया में गीता का अकाल पड़ गया, लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया, गीता ही नहीं थी। सोचो कि भैया कौन सी ऐसी किताब है जिसमें इतना तहलका मचा हुआ है, सारा गवर्नमेंट से लेकर पूरा सब, जिस कैसी किताब जिसका चर्चा हो रही है, गीता खत्म हो गई। आज भक्त विज्ञान महाराज कहे कि अब तो गीता इंडिया से बगाला पड़ रहा है, गीता ही खत्म। तो भगवान की इच्छा थी, इंसान कुछ सोचता है लेकिन वही होता है जो भगवान सोचते हैं, जो भगवान चाहते हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें किसको प्रसन्न करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है, प्रभुपाद जी ये चाहते हैं कि जितने भक्त हैं इस मंदिर के परिसर में उन्हें मंगल आरती आना चाहिए। प्रभुपाद के दिस बेस्ट ऑफर लेजिए निके जी, यह जो हरे कृष्णा लैंड है ये पागलों के लिए, आलसियों के लिए नहीं है। अगर आप भक्त बनने के लिए आए हैं तो सुबह जो है आपको मंगल आरती आना ही चाहिए, जब करना ही चाहिए, और भागवतम क्लास में बैठ करके कथा सुननी चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना है, सेवा करना चाहिए है ना। चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, प्रभुपा जी के कोलकाता में प्रभुपा जी 3 घंटे सिर्फ इसी बात पर चल दिया, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। क्यों? कृष्ण ही ऐसे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं को कंट्रोल करते हैं। देवी देवताओं को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हुए बांसुरी बजाते हैं और मुस्कुराते हैं। ये राधा राज बिहारी कर सकते हैं, और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, न कोई देवी न कोई देवता, कोई नहीं कर सकता, कि जो इतना कंट्रोल करते हुए और फिर बांसुरी हो जाए। तो याद, आप चाहते हैं चैन की बंसी बजाना चाहते हैं, तो आपको भी किसकी भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण को। ये जितने भी डांसर्स होते हैं जो डांस करते हैं, ये कृष्ण को अपना आदर्श क्यों मानते हैं, कि कृष्ण जो है 1000 फन वाले कालिया नाग पर डांस करके दिखाया। ये जितने भी डांसर हैं असली सांप के ऊपर डांस करके दिखाए, हम कहते एक ही काला जो कोबरा है उसी के ऊपर डांस करके दिखाए, भाग खड़े होंगे, डांस होता रहे, एक कोबरा आप छोड़ दो भाग खड़े होंगे, डांस क्या करेंगे। लेकिन हमारे कृष्ण कालिया मर्दन के समय उस पर डांस करके बैलेंस करना, अब बैलेंस करके बांसुरी बजाना उसके फन पे कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आदर्श कौन है, कृष्ण है। हम लोग इसीलिए कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है तो देवी देवता भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। जानते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियस्ट बिजनेसमैन, वो कृष्ण को ही अपना बिजनेस गुरु मानते हैं। क्यों? वो जान कहते हैं, कई लोगों से बात होती है, यही बोलते हैं कि भाई कृष्ण जैसा पुरुष तो मिलना मुश्किल, जो सबको मैनेज करना जानता है ना, सबको जो मैनेज करने मार, अब मैनेज करते हुए मुस्कुराना, बांसी बजाना, एक कृष्ण के अलावा आज दुनिया कोई नहीं कर सकता, आप जान से। तो हम लोग राधाराज बिहारी के भक्त हैं और उनकी भक्ति में लगे रहें। एक प्रभुपाद जी से प्रार्थना है कि अपनी कृपा हम पर करते रहें और प्रभुपाद जी की सेवा में और राधाराज बिहारी की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत महोत्सव की, श्री प्रभुपाद लीलामृत की, श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, सीताराम रचन भक्त हनुमान जी की।